ऊपर से प्रिय आत्मा, आज अगन चौदस है और बड़ा सुंदर विषय सबने मिलकर दिया है। इन भजन से पूछा कि भाई आज किस विषय सुनना चाहते हो, तो कहे स्वामी जी गणपति का सृजन है फिर आज विसर्जन है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो सृजन और विसर्जन आज का आपके समक्ष क्या है विचार व्यक्त करेंगे। और मूल रूप से इंद्रवदन ने कहा कि सृजन विसर्जन बड़ी अच्छी बात है। आप प्रकृति को देखें, आप अपने को देखें। प्रकृति में आप अपनी जमीन में समय पर गेहूं का रोपण करते हैं, बगीचा लगाते हैं, या हम भोजन करते हैं। आपने अपनी जमीन में गेहूं लगाया, गेहूं कहाँ लगाया? जमीन में। जमीन क्या है? विराट। और उसके अंदर आपने प्रवेश किया, आरोप का मतलब अंग। तो आप देखेंगे कि समय पर पानी देते रहे, खातर देते रहे, रखवाली करते रहे, तो एक गेहूं में से विकास होते होते हमारे महेंद्र भाई ने सूरत निवासी अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत सरकारी काम अच्छा किए हैं, खुद अच्छे हैं। ये जो अभी वैज्ञानिकों ने विस्फोट की बात की उसकी भी चर्चा इस सृजन विसर्जन में हम करेंगे। थोड़ी मर्यादा से बोल रहा हूं, ये वेदों में है, लेकिन हम लोग आम लोगों को पूरा वेद विधिवत नहीं समझा सके, और गुरु की मर्यादा के कारण हम पब्लिक में इतना अच्छी तरह बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो पहले थोड़ा इशारा करूंगा, सब समझदार लोग बैठे हैं और मेरे इशारे को समझेंगे। वेद पूरी विज्ञान की बात कर रहे हैं, जमीन के संपर्क में आकर गेहूं का विसर्जन हुआ। अगर गेहूं सड़ा हुआ होता तो विसर्जित होता, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं होता, अंकुरण नहीं आता। और गेहूं को अगर आप पत्थर पर रखते तो भी विस्फोट नहीं होता, समय पर खत्म हो जाता। हम आपके सामने विचार व्यक्त कर रहे हैं, हमने पा कहा, पी कहा, का कहा, टा गया, तो देखिए दो चीजों के फ्रिक्शन में जब विस्फोट हुआ तो शब्द निकला। इसको आप समझ लीजिए, सृजन विसर्जन वाली बात काफी समझ में आ जाए। महेंद्र भाई में बहुत अच्छा पूछा, लेकिन बड़े प्यार से कहता हूं कि कुछ हमारी कमी रही कि अंग्रेजों के राज में हमें शेक्सपियर, मिल्टन, लॉन्गफेलो के विषय में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन वेद क्या है, वेद व्यास कौन है, कालिदास कौन है, बाणभट्ट कौन है, बहुत अभी हिंदू ही नहीं जानते, लेकिन शेक्सपियर, मिल्टन, लॉन्गफेलो को जानते हैं। उन लोगों ने अपना प्रचार किया, हमारा नहीं। और मानसिकता इतनी आई कि अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजियत का जो प्रभाव था हमारे आप पर रहा, इस समय समय की बात होती है। तो वेद अगर उठा के देखें तो उसी बात को सरल ढंग से आपको समझाऊंगा। और सृजन विसर्जन विस्फोट, ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं वो इशारे से बात करूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं, एक मर्यादा है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे समझ लेंगे। मेरे माता पिता समय पर मिले, परिपक्व अवस्था में समय पर मिले, मेरे पिता का खून विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ और मेरी मां ने स्वीकार किया, तो हमारा जन्म जो है वो भी विस्फोट से ही। अब इतनी मर्यादा में रहकर बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मैं शब्द ही बोल रहा हूं, पा बोला पी बोला, अपर लोअर पार्ट ऑफ द लिप्स, ये जो फ्रिक्शन है इससे विस्फोट पैदा हुआ। अगर ये लिप्स पैरालाइज होता है, कमजोर होता, तो विस्फोट नहीं होता। आप जब दिवाली के समय में फटाकड़े का विस्फोट करते हैं तो उसमें क्या है, अंदर कुछ भरा हुआ है। फिर वर्तमान में जाते हैं, उसको अग्नि देते हैं, अब विस्फोट जबरदस्त होता है। आज तो विज्ञान ने विस्फोट को इतना ऊंचा कर दिया है कि बस पूछ के मत। विस्फोट का अर्थ ये जो बिजली आपकी चमकती है वो क्या है, दो बादलों का आपस में फ्रिक्शन है, घर्षण, विस्फोट होता है। बिजली इतनी जबरदस्त होती है कि पेपर के माध्यम से देखते होंगे आप। पानी की एनालिसिस कीजिए तो आम भाषा में दो भाग हाइड्रोजन है, एक भाग ऑक्सीजन है। आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो वो उसमें विस्फोट होता है और उससे फिर पानी बनता है। आम भाषा में दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन की बात है, लेकिन अब वैज्ञानिक एक बात स्वीकार कर रहे हैं, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके फिर उनको मिलाकर पानी तो बना दिया, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुदरती है, हमने उसका अध्ययन किया, उसको किया। आज एनर्जी की भी बातें है वैज्ञानिक कह रहे हैं, जैसे हमने पंच महाभूत का ये है किस तरह बना, कैसे बना, बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि जहां आपको कोई एक सत्ता स्वीकार कर दो करनी पड़े, वहां श्रद्धा का विषय, तर्क का विषय नहीं। मैं कोई भी उदाहरण दे सकता हूं, चलो एक आम का देता हूं, माता पिता का भी दे सकता हूं, बकरा बकरी का भी दे सकता हूं, शेर और शेरनी का भी दे सकता हूं, गधा और गधेड़ी का भी दे सकता हूं, पुरुष और नारी का भी दे सकता हूं, लेकिन बात को समझिए। एक तर्क है, पहले गुठली हुई आम, अब जरा विवेक से देखिए, अगर कोई कहता है कि पहले गुठली हुई तो भाई गुठली तो पेड़ में से होती है, पहले पेड़ हुआ, पेड़ गुठली में से हुआ, तो आपकी समझ में नहीं आता कि पहले गुठली हुई कि पहले, अगर गुठली कहूँ तो पेड़ में से गुठली हुई, फिर पेड़ किस तरह बना, कैसे बना, इसका जवाब भेज देता है विज्ञान। नहीं, विज्ञान कहता है नहीं, टेक इट ग्रांटेड, इट इज लास्ट नेचर, बस गुठली हुई कि पेड़ हुआ कि मुर्गा हुई कि मुर्गी हुई कि नर हुआ कि नारी छोड़। लेकिन इसका जवाब वेद देगा और जिसका वैज्ञानिक लोग पता लगा, वेद उठा के देखें तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को उम्र करोड़ों वर्ष का बताया है, इसमें गर्मी आई, ये वैज्ञानिक है, और विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट से वेद कहता है कि दो टुकड़े हुए, जो टुकड़ा नजदीक रहा वो चंद्र बना, जो दूर गया वो बना, फिर ये बना, फिर ये बना, सब वेदों में। तो विज्ञान इसे कुदरती मान रहा है कि हुआ, हम लोगों ने बाद में उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से दिया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मान रहे हैं। ब्रह्मा गुप्त है, हमारे अच्छे ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं तो जो वेदी बनाते उसमें ब्रह्मा को नीचे गुप्त रखते हैं, हमारी कहानियों में भी ब्रह्मा गुप्त है, हमारे शरीर में भी गुप्त भाग को जो है ब्रह्मा का सृजन का भाग कहा गया, सृजन अंधेरे में होता है, हम कंसीव हमारी बेटी होती है अंधेरे में होती है, फिर 9 महीने के बाद वो प्रकट होती है। तो इस पर थोड़ा सा आप विचार, वेद कहता है एकम सद विपरा बहुधा बदन, एको अहम भविष्य, जिसे वैज्ञानिकों ने कुदरत कहा उसका एक उदाहरण आपको दूंगा। हम आप जो कुछ भोजन करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे, वैज्ञानिक कहते हैं अभी हर चीज में से हम ग्लूकोज नहीं निकाल पाए, बाद में प्रक्रिया चलती है, सब एंजाइम से बनते हैं, विटामिन से बनता है, सब है, फिर ब्लड बनता है। अभी आज तक का समाचार है कि कुदरती ब्लड हमारे वैज्ञानिक नहीं बना पाए, सारी प्रक्रिया को देखा, बहुत कुछ दिया, लेकिन कुदरती ब्लड नहीं बना पाए। अभी लोग प्रकृति की बात करते हैं, हम परमात्मा की बात करते हैं, ये होता है। वैज्ञानिक तो हैरान है और उसका पता लगा रहे हैं, हम जुड़वा भाई हैं फिर भी कहीं ना कहीं कोई अंतर रहेगा, अंगूठे का अंतर है, थोड़ी आवाज का अंतर है, थोड़ा चेहरे का अंतर है, पिता एक माँ एक जुड़वा, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर तो रहेगा। अब ये प्रकृति किस तरह अंतर बनाती है, कैसे करती है, ब्लड ग्रुप भी दोनों का अलग अलग होता है, जुड़वा भाई है फिर भी एक का ब्लड ग्रुप अलग है, एक अलग है, माँ बाप वही फिर कैसे हो जाता है, पिता का ब्लड अलग है, माँ का अलग है, दोनों के मेल से तीसरा पैदा हुआ वो अलग है। उसका जो सर्जन है, इसलिए वेद ने कहा है कि परमात्मा की सर्जन जो प्रक्रिया है उसे समझने की कोशिश करो, क्यों होता है, कैसे होता है, ये बड़ा मुश्किल है, क्यों ऐसा हुआ, आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं मिलती, बस समझ लो कि अंतर है, आवाज नहीं मिलेगी, अंगूठे का निशान नहीं मिलेगा, ये होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। सब अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक कहते हैं, करोड़ों लोग आए हैं और रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का अंगूठे का निशान कभी कभी नहीं मिलेगा, जबकि ऐसे देखे तो कुछ नहीं नजर, कितनी एक जबरदस्त बात। और जो अंतर है एक दूसरे के लिए पूरक, तो महेंद्र भाई बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हमारे वेदों का ही अध्ययन किए, वो नहीं बता रहे, हम लोग पहले कहानियां दादी माँ से सुनते थे कि चांद पर से परी आई, परी फिर गई, राजकुमार शादी किया, ले गई कहानियां। मैं जब नासा गया था तो मेरे साथ में मेरे भाई थे, वो भी एक वैज्ञानिक थे और काफी वहाँ नासा के वैज्ञानिक पहले से बातचीत हो गई थी, हमारे गुजरात के पंजाब के भी वैज्ञानिक है वहाँ, 80% तो मूल माइंड हमारा ही है हिंदुस्तान का, तो पहले से बातचीत हुई थी, तो मिलने की व्यवस्था भी हुई थी, सब हुई थी। तो मैंने एक प्रश्न किया था कि भाई आज लोग चांद पर जाने का विचार कहाँ से आया? आप ताजुब करेंगे कि वैज्ञानिकों ने कहा भारत की जो परियों की कहानी है कि परी चांद पर से आती थी, बातचीत करती थी, राजकुमार को शादी लेके गई, ऐसा तो हम वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये कहानी में संभव है कल्पना हो लेकिन सत्य। हमारे गुरुओं की भी बात आई है, खासकर गुरु नानक की आई है कि किसी लोक में जा सकते थे, आ सकते थे, ऋषि मुनियों की भी बात है। तो उन लोगों ने रिसर्च में नहीं कहा कि ये हिंदुस्तान के कहानी से सीखा, ऋषि मुनियों के आधार पर सीखा, लेकिन प्राइवेटली मुझे बताया कि हमें जो है आपकी कहानियों से ही प्रेरणा मिली। ये जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो चांद पर गया उसका बहुत एडवर्टाइज हुआ, तो मैंने पूछा था भाई चांद पर जो गया उसका बहुत, लाइका गई, कुतरी गई, ये गया, आर्मस्ट्रांग गया, ये गया, जो कुछ भी जानता था बताया, लेकिन वहां जाने की जो विधि है वो किसने बताया और उस विधि को जो प्रैक्टिकल करके किया उसका नाम क्यों नहीं आता? चांद पे पहुंच गए तो उन्होंने बड़ी एक सीक्रेट बात बताई, मूल आप लोग हैं, इंडिया का माइंड है, और ये थोड़ी पॉलिटिकल बात है कि जो मूल इंडिया का माइंड है सारी व्यवस्था उसकी है। बात तो आपकी ठीक है, चांद पर पहुंचने वाले कितना नाम, लेकिन चांद तक पहुंचाने की प्रक्रिया बताने वाले का कोई कोई नाम आप नहीं। तो स्वामी जी आप ठीक है, लेकिन मूल आप लोग हैं और उनको कोई किडनैप ना करे कोई देश, आप लोग लड़ो ना कि हमें हमारा आदमी वापस करो। तो स्वामी जी पॉलिटिकल बात है, चांद पर जो पहुंचेगा हमारा आदमी होता है, लेकिन चांद तक पहुंचाने वाला आपका आदमी है, इसलिए छुपा देगा, नाम नहीं बताना। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि भाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ। एक बात तो वेद वाली जो बात आ जाती है, कई बार आपने आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रपति के रूप में जब अब्दुल कलाम थे, कई बार क्या देश क्या विदेश क्या यूनिवर्सिटी कितनी बार बोल चुके कि जो कुछ हमारे वेद में है दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं। एक बात वो बड़ी सुंदर बोले थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जब वो राष्ट्रपति थे, पता नहीं वो आप लोग उस बात को सुने कि नहीं सुने, अच्छी बातें का जितना प्रचार होना चाहिए नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के सामने बोले तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासी, वो कन्वोकेशन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जब कन्वोकेशन उनको बुलाया गया था तब के बाद, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, जब आप अपने देश से बाहर जाते हो तो कहीं थूक नहीं सकते, कहीं पान का पिचकारी नहीं मान सकते, कितने सावधानी रखते हो, क्योंकि वहां के नियम कर। अब जापान की बात बताऊं, थूक कर देख लीजिए, एक अमेरिका के केलक छिलका खेल के देख लीजिए, आप थाईलैंड जाइए, आप ढेर मार जाइए, बीड़ी का सिगरेट टुकड़ा बाहर फेंक के देख लीजिए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम बड़ी सुंदर बात है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप अपने देश से बाहर जाते हो तो कानून के डर के मारे आप बड़े शिस्त का पालन करते हैं, लेकिन भारत का हर व्यक्ति स्वयं जन्म से अनुशासित है, ये शासित नहीं है। अगर शासित होते तो आप सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंक सकते थे, केले का छिलका नहीं फेंक सकते थे, लेकिन ये निशानी गुलाम की है। हमारा देश गुलाम भले रहा, लेकिन कभी किसी चीज के गुलामी पसंद नहीं किया, क्योंकि ये देश सबको अपना मानता रहा, इसलिए गुलाम होकर के भी इसने कभी नहीं सोचा कि मैं गुलाम, और जिस दिन पता चला गुलाम है निकाल के बाहर कर। ये आपको बता, एक गांधी जी ने एहसास कराया कि गुलाम क्या है, और जब एहसास हुआ तो हम हो गए। एक बात कहता हूं आप, हम तो पूरे विश्व को आज भी कुटुंब मानते हैं। आज हमारा आदमी कहीं जाए कुछ करे, ठीक है, तो इन सब बातों में गहराई जाना नहीं चाहता, लेकिन जो आपको बताना चाहता हूं उसे तो। हमारे यहां अनुशासन की बात की गई, शासन की नहीं, वहां सब कानून शासन के। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि जरा अपनी संस्कृति को समझो, हर व्यक्ति, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, अगर आप लोग पढ़े होंगे, हमारे भारत में सब नाम लिया, अजमेर में उर्स होता है, हमारे कुंभ मेला होता है, सबका नाम लेके बताया कि ऐसे उत्सव पर देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इतना अनुशासित है कि बहुत पुलिस के रखवाले की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने एक इशारा किया कि किसी देश का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर आता है तो 10 आदमी पीछे 200 पुलिस होती है, आदमी कुल 10 होते हैं पुलिस, लेकिन क्या भारत है कि लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात है, आप तो जानते हैं, अजमेर में उर्स होता है, एक दो बार मैं गया हूं, मैं कहता हूं कि लाखों लोग आते हैं, लेकिन मजाल है कि कहीं कोई चोरी हो जाए, कि कहीं कोई कहे, कोई शिकायत हो, पुलिस होती तो पुलिस की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती। एक बात है। तो हमारा देश शुरू से माता पिता के नियम में रहकर अनुशासन को पसंद करता था, और ये लोग शासन मतलब नियम बना, इसलिए आप थूक नहीं सकते, आप केले के छिलका नहीं फेंक सकते, तो ये अनुशासन वाली बात। आप अमेरिका में जाइए, केले के छिलका $500 जोड़ो, $500 न देना पड़े इसलिए आप केले के छिलका नहीं फेंकते, और यहाँ इसलिए फेंकते हैं, आदमी फेंक दो कोई पूछने वाला नहीं, केले के छिलका के आदमी भी फेंक दो तो जहां बैठो वहीं थूक दो, कोई नहीं पूछता। एक बात करता हूं, तो हमारे देश में संस्कृति के हिसाब पर क्या सफाई, क्या अतिथि सत्कार शुरू से रहा है और रहेगा। तो कुदरत में ये आप नहीं कह सकते, अगर करें तो विश्वास करना पड़ेगा वहां, क्योंकि नहीं, पहले आम हुआ कि पेड़ हुआ, पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ, पहले नर हुआ कि नारी, नहीं। वेद अगर उठा के देखिए तो वेद में आया कि सृष्टि की रचना में कुदरती दो चीजें रही। अब उस कुदरत का एक उदाहरण दे दो, आपके पास कोई मैग्नेट है तो देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, प्लस के सामने माइनस अपने आप होता है, उसे बनाना नहीं पड़ता। तो वेद भी वहां पर यह कह देता है इसे स्वीकार कि किस तरह से हुआ वो कहानियों में आया। अब उन कहानियों को वैज्ञानिक अभी इतना स्वरूप नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो कहानी है वो आपको सुना, अभी यहां तक नहीं गए कि कैसे हुआ। कहानियों का स्वरूप यह है कि जगत की रचना में पहले लिक्विड था, पानी था, ये हुआ, फिर जीव हुआ, फिर ये हुआ, सब है, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। फिर जल में मछलियां पैदा हुई, फिर कछुआ पैदा हुआ, फिर ये हुआ, ये स्वरूप हुआ, इसलिए भगवान पहले मछली के रूप में आए, कच्छप के रूप में आए, कछुआ के रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, आपका नरसिंह का जो अवतार हुआ, फिर आए। लेकिन वो सब आए आए कैसे आए ये सब नहीं, तो विज्ञान इसकी सोच कर रहा है और पा रहे। लेकिन जो कुछ है वो भगवान का नारेश्वर के स्वरूप का थोड़ा विचार वैज्ञानिक कर रहे। आप लोग जानते हैं हमारे कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर शंकर आधा नर और आधा नारी के रूप में दिखाया गया, आधा नारीश्वर। जो लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर साइंस का विज्ञान जो उनको मालूम है, ये जो पपैया है, पपीता है, इस पर भी खोज की गई कि नारी और उसका नर अपने आप उड़कर आता है पपैया, है कि नहीं, और फिर दोनों के संयोग से वो खेती करने वाले इस बात को जानते हो, नर अपने आप आता है, नारी को आप लगाते हैं कि प्लस के सामने माइनस अपने आप होता है। कैसे होता क्या नहीं, ये तर्क है विज्ञान में आता है कि इसको समझो कैसा होता है। तो ये जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, अब मैं अपने पास जाऊं, आप पर आ जाऊं, मेरा जन्म न केवल पिता से है न केवल माँ से, दोनों के मिलते हैं, और दोनों में जो विस्फोट हुआ, मेरी माँ ने कंसीव किया, उसमें ताकत थी, निरोगी थी, और वो जो पिता ने विस्फोट करके दिया और 9 महीने बाद कुदरती, ना आपको प्रार्थना करनी है, आपको अपने को संभालना, मतलब माँ को संभालना है, और फिर जन्म भी जब पूरा हुआ तो विस्फोट से ही हुआ, और विस्फोट में दर्द होता ही है, जैसे प्रसव की पीड़ा करते, कैसे हम 9 महीने पहले पोसे, तो कहता है कि माँ के कारण, माँ के ब्रत से, वो सब ठीक है, लेकिन बड़ी अद्भुत। इसलिए ऋषि मुनि ने कहा कि तुम्हारा जन्म ही एक अद्भुत है। मदन मोहन मालवीय से पूछा गया, कौन सी ऐसी अद्भुत बात आप देखे कि आप ईश्वर के प्रति इतने बड़े भक्त हुए? कहा, मैं सोचा कि घर में कैसे रहा, मैं बाहर कैसे आए, कैसे मेरा विकास हो रहा है, मेरा तो कोई संकल्प नहीं, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आज मैं बड़ा हुआ, विचार करता हूं, लेकिन गर्भ से लेकर के जब तक समझदार नहीं बना, किस तरह चलता रहा, कौन बचाता रहा, कोई है शक्ति जिसे ऋषि मुनियों ने सत कहा, प्रेम कहा, परमात्मा स्वरूप कहा, कुछ नाम दिया। इसलिए मुझे परमात्मा की पहचान के लिए दूसरी कोई प्रक्रिया जानने की जरूरत, मेरा जन्म ही चमत्कार है। ये मदन मोहन महामना मदन मोहन मालवीय से पूछा गया था, बनारस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना किए थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों। तो प्रकृति में जो अस्तित्व है उसका विनाश, सर्जन मतलब है प्रकट होना, और संस्कृत में जन्म का अर्थ भी होता है प्रकट होना। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी माँ के चेहरे से अलग। हमारा बेटा भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, फिर भी पिता के चेहरे से अलग। माँ बाप के द्वारा एक पुत्र या पुत्री जब प्रकट होते हैं तो भी चेहरे में अंतर है, स्वभाव में अंतर है। ये सुनने की बात है, देखने की बात है, विज्ञान का। लेकिन फिर क्यों? उसके उत्तर यही है कि पर्यावरण में जो आप रहते हैं, आप जो चिंतन करते हैं, देखते हैं, उसका प्रभाव है। तो हमारी बातों को अभिमन्यु के माध्यम से विज्ञान समझना। अभी एक लेटेस्ट बात बताऊं कि विज्ञान हमारी बातों को अब असंभव नहीं मान रहा है, सिर्फ कह रहा है कि यंत्र के द्वारा पता लगा रहा है। आप एक आम गणित लगाइए, छोटी उम्र में शादी हो जाए मेरी बेटी के, मान लो 16 साल 17 साल, तो आमतौर से प्रक्रिया में है कि बहुत अच्छी तरह खिलाऊंगा पिलाऊंगा, डॉक्टर सलाह लूंगा, तो 45-46 साल तक ही वो पुत्र या पुत्री को जन्म दे सकती है, नहीं 38-39 के बाद खत्म। तो ये लोग बड़े हैं कि भाई 100 पुत्र दशरथ के कैसे पैदा हुए, लेकिन कहते हैं नहीं, मैं गुरु हूँ, वो सब नहीं बताना चाहता, क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जो उम्र से कोई मतलब नहीं। तो वो बताते हैं कि नहीं, इनके पास कुछ जड़ी बूटी थी और उसकी खोज कर रहे हैं। उन सब बातों में गहराई से नहीं जाना चाहता, डॉक्टर वगैरह बताएंगे कि वहाँ तो 60-65-70 में भी बीच में तो बड़ी बातें भी आई। तो कुदरती जो है, 100 पुत्र किसी को नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी विज्ञान कहता है कि हम एक दिन ऐसा पता लगाएंगे कि आमतौर से रसिया देखा गया, लंका को देखा गया, पुरानी कहानियां देखी गई, आज है। तो आमतौर से अगर 18-19 साल में शादी हो जाए तो कम से कम 14-15 पुत्र पुत्रियों तक को तो लोगों ने रसिया में देखा है, हिंदुस्तान में देखा, 14-15 तक तो देखा, बाकी 5-6-7 तो मामूली बात है। लेकिन ये पहले असंभव मानते थे, कहते नहीं कोई थी इनके पास थी, अभी उसकी खोज कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले हमारी बातों को ये गल्प मानते थे, झूठ मानते थे, लेकिन अब किसी बात पर शंका नहीं करते, तपास कर रहे हैं कि ये था ठीक था, और हम यंत्र और विज्ञान के माध्यम से कैसे उसे सिद्ध कर सकते हैं। अभी यही देखिए, पशुओं की बात लीजिए, इन पर रिसर्च हुई कितना हुआ, हम गाय की बात करें, घोड़े की बात करें, मेल की बात करें, कितना एक दूसरे के ब्लड में विस्फोट करके क्या से क्या बनाया गया, वो वैज्ञानिक ढंग से विस्फोट ही किया गया, इनका लिया गया, उसका लिया, दोनों का मेल किया, प्रयोग किया, दोनों का मेल से फिर ये पैदा हुआ, और देख लीजिए कितने जबरदस्त ताकत उनमें पैदा हो रही है। सिर्फ विज्ञान यही कह रहा है, दूसरे का ब्लड लेकर के विस्फोट करके जो आप गाय वगैरह कर रहे हैं उनका दूध स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, विज्ञान भी कह रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का मिला करके वो कर रहे हैं, पहले भी हुआ होगा। तो ये जो अनुमानित स्वरूप है ये वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे आजकल हम मिलाते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों ने भी जंगल में रहते हुए कुछ न कुछ रिसर्च की होगी, मिलाया होगा, विस्फोट किया होगा, और उसमें से सब चीजें बनती गई। तो महेंद्र भाई वेद के आधार से, तो पृथ्वी का जो विस्फोट हुआ वहां ऋषियों ने कह दिया हम ऋषियों को मानते हैं, उसके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा नजदीक रहा तो चंद्रमा बना, दूसरा सूर्य बना, फिर उसमें से और विस्फोट होता गया। और आज विज्ञान भी कहता है ऐसे ऐसे तारे हैं जिनका प्रकाश आने में 100 बरस लग जाता है, विज्ञान का, एक के बाद एक, एक के बाद एक विस्फोट होता गया। तो ये होता है, बस ये आप समझ लीजिए। गणपति की बात आई तो दो तीन बातें बता दूं, बड़े प्यार से कहता, ये जबरदस्त वैज्ञानिक बात है। शिव के पुत्र हैं, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आप लोग बुद्धिमान हैं, मनीषानंद ने भी अध्ययन किया है, शिव विवाह पर भी गणपति की पूजा की गई, तो अगर शिव के पुत्र हैं तो शिव विवाह पर, विवाह से पहले कैसे गणपति? आप पढ़िए, वहां भी गणपति की पूजा की गई। अब देखिए, ये समझिए, वेद कहता है कि हमारे ऋषि मुनियों में जब जरूरत पड़ी तो मंत्रों के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित किया कि अपने संकल्प से देवताओं का निर्माण किया। आज देख लीजिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर यहां बैठे हैं, ये जो दवा देते हैं उसके पीछे कोई माइंड है? आज से 50 साल पहले वो दवा नहीं, लेकिन अध्ययन करते रहे करते रहे, प्रयोग करते रहे करते रहे, और प्रयोग करके आज कितनी दवाइयां निकाली। जब मैं छोटा था तो कभी सुनने में आए किसको टीबी है तो घर से निकाल देते थे, कोई मिलता नहीं था। आजकल तो मैं जब छोटा था पता चले इसको टीबी है तो कोई मिलने तक नहीं, कोई दवाई नहीं, तो वो मर जाता था, और रोटी भी ऐसे कुत्ते की तरह फेंक करके देते। फिर रिसर्च होती रही और एक के बाद एक डॉक्टर आते रहे करते रहे, साइंटिस्ट आई हुआ, पता लगा नेचर में सब कुछ है, क्षमता प्राप्त की। आज हम मिलिट्री वालों को जानते हैं, एक में से 10, 10 में 100 गोली होती है। हमारा पुराना देखिए, एक बार में से 10, 10 तो सीखा कहां गया? हवा में मिसाइल से आ गया ना मार करने, एक पहले हवा में कैसे उड़ते थे कैसे करते थे। तो हमारी ही चीजों को वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से, अभी हनुमान जी का इस पर शोध हो रही है, और तर्क कैसे आया वो बताऊंगा आपको। हम लोग जब पाठ हनुमान जी करते हैं, मुद्रिका मेल मुख माही, हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रख करके और समुद्र पार हो गए। पहले कहा था ये लोग गप्पा मारते, अब तर्क आया वैज्ञानिक कि मुद्रिका या तो उंगली में पहनी जाती है या बगल में रखे मुंह में क्यों। अभी लोग शोध कर रहे हैं कि हमारे यहां वेदों में है, पता नहीं लुप्त हो गया, लेकिन पहले मुद्रिकाएं जो बनते थे पारा शोध करके, और पारे के कितने प्रयोग आ गए, तो वैज्ञानिक कहते हैं हम भी पारे को शोध करके एक ऐसी चीज बनाएंगे कि केवल मुख में रखने से वो जहां चाहे उड़ के जा सके। लेकिन अब गलत नहीं मान रहे, अब गलत नहीं मान रहे, कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों खोज कर रहे हैं। ये प्रक्रिया में सर्जन विसर्जन रोज हो रहा है। हम आप सुबह भोजन किए, उसका विसर्जन हुआ, विसर्जन होते होते उसमें सब कुछ बना। अगर उसका विसर्जन नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात क्यों नहीं बनेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मदद करेगा, टेबलेट देगा, कुछ करेगा, लेकिन खून कैसे बनता है? बनता है। इसलिए मैंने कहा वैज्ञानिक हैरान है कि हम ग्लूकोज निकाल पाए, विटामिन निकाल पाए, लेकिन कुदरती ब्लड कैसे बनता है जानते हुए अभी तक हम ब्लड नहीं बना पाए। अभी तक ब्लड नहीं बना पाए और उसमें वो विस्फोट ही होता है। ऐसा 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 वेदों में आके ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो एक गणपति की जो बात है, ये बुद्धि के देवता, बल के देवता, संयम के, और हनुमान जी का भी यही है। हमारे शरीर में हमारी जो किडनी है एक गणपति के आकार की है। बचपन से अगर आप गणपति का पूजन करें तो एक डॉक्टरों की बात बता दें, आप हॉस्पिटल में जाइए, कई बार चार पांच रोग आपके होते हैं,